ఓం ఓం ఓం. ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్యజీ మహారాజ్ ద్వారా విరచిత్ శివానంద లహరి నామక్ శివ భక్తి సి ఉతప్రోత్ స్తోత్ర కే ఆధార్ పర్ కుచ్ భక్తి భావ కే శబ్దో పర్ విచార్ కర్ రహే హైన్. अभ्यास के लिए 39वां श्लोक. धर्मो में चतुरंग्रिका सुचरितः पापं विना संगतं काम क्रोध मदादयो विगलितः काला सुख विस्कृतः ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानस पुंडरीक नगरे राजावतंसे स्थिते दीयंत्रेन वचो घटेन कविता कुल्योपकुल्याक्रमैर आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितम् भोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्ष्यान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेशभीतिः कुतः पापोत्पातविमोचनाय रुचिरैः स्वर्याय मृत्युंजय स्तोत्रध्याननति प्रदक्षिण सपर यालोचना कर्णने जिह्वा चित्तशिरोङ्गृहस्तनयन श्रौतैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव मामे अवचः गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकार उद्यत गुणः स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियवचो द्वाराणि देहे स्थितः विद्या वस्तु समृद्धिरित्यखिल सामग्रिसमेति सदा दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासं कुरु. धर्मो मे चतुरंग्रिका सुचरितः पापं विनाशं गतं काम क्रोध मदादयो विगलितः काला सुख विस्कृतः ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानस पुंडरीक नगरे राजावतंसे स्थिते. आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज एक सुशासन की बात करते हैं. राष्ट्रत्व भी समृद्ध हो सकता है जब राष्ट्राध्यक्ष में नैतिकता हो. समाज सुसंगठित तब होता है राजा स्वयं ही यम नियमों में रहता हो. राष्ट्राध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो राज्य कितना समृद्ध हो सकता है और कोई राष्ट्र कितना विपन्न हो सकता है. इसका यहां शंकराचार्य जी एक उपमा देते हुए भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति भाव के इन शब्दों को अर्पण करते हैं. यहां भगवान शिव के लिए संबोधन किया है मान्ये राजवतन से आप सभी के मान्य राजा हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माने और कोई न माने। वास्तव में राज्याध्यक्ष राज्याध्यक्ष सर्वमान्य होना ही चाहिए। एक पार्टी माने और दूसरी पार्टी न माने, वो निर्विवाद नहीं हो सकता है। इसीलिए वास्तव में ये कहा तो जाता है कि आज के 21वीं शताब्दी प्रजातंत्र गणतंत्र प्रजासत्ता का है, बहुदलीय प्रजातंत्र को सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि सभी को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। ये इसीलिए वे लोग चाहते हैं इस प्रजातंत्र को, जो भ्रष्टाचार करने का मौका हमको भी मिले। नैतिक और ईमानदार सुचरित निष्ठावान राष्ट्रभक्त बनने के लिए प्रजातंत्र की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो इसका मतलब मैं प्रजातंत्र का खंडन करने वाला हूं ऐसा नहीं समझ लेना, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो प्रजातंत्र की मूल हृदय क्या है, तो ये प्रजा को भ्रष्टाचार करने का अवसर की प्राप्ति दिलाना, यही है। नहीं तो तुमको कुछ लेना नहीं है, तो अनुशासित जीवन जीना है तो किसी भी तंत्र में तुम जी सकते हो ना। प्रजा ही तंत्र क्यों चाहिए? अनुशासित जीवन जीना हो तो किसी भी तंत्र में जी सकते हो। ईमानदार जीवन जीना हो तो किसी भी तंत्र में जी सकते हो। अरे और तंत्र को मानो चाहे न मानो, भगवत तंत्र को तो तुम मान सकते हो। एक भगवत तंत्र को मानो, भगवान से डरो, ये सबका साक्षी वो परमात्मा है। मेरे हर कर्मों का साक्षी वो परमात्मा है। और कोई देखे चाहे न देखे, वह परमात्मा मेरे हर कर्म को जानता है, और वह मुझे दंड देने और पुरस्कार देने में समर्थ भी है। मेरे सुकर्मों को देखकर वह जितना सुकर्म का फल हो सकता है वह तो दे सकता ही है, उसके अतिरिक्त अतिरिक्त प्रसन्न होकर मुझे और भी कुछ दे सकता है। और मेरे कुकर्मों को देखकर मुझे किसी भी समय में कुछ भी किसी भी प्रकार का दंड भी दे सकता है। तो ये भगवत तंत्र को जिसने हृदय में धारण किया हो, उसको बाहर के किसी भी तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा जिसने हृदय में भगवत तंत्र को धारण नहीं किया हो, वो चाहे वामपंथियों की तरह लाया गया साम्यवादी साम्यवादी हो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, हमारे पार्टी का सिद्धांत ये बात है, फलाना बात है, फलाना बात है, अरे भाई हमको राष्ट्राध्यक्ष बनाओ, हम विकास करेंगे। अरे भाई राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो क्या विनाश करोगे? तुम्हारे पार्टी को यदि विजय नहीं बनाएंगे तो क्या तुम विनाश करोगे? तो फिर तुम राष्ट्रद्रोही हो और क्या। सत्ता में गए तो विकास करे, और सत्ता में नहीं पहुंचे तो क्या विनाश करोगे? तो तुमको राज्य में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रद्रोही हो। राष्ट्र का विकास तो चाहे सत्ता में रहो चाहे सत्ता में न रहो, ईमानदारी तो चाहे सत्ता में रहो चाहे सत्ता में नहीं रहो, नैतिकता चाहे सत्ता में रहो चाहे न रहो, ये तो मानव का भूषण है, किसी पार्टी का पैटर्न नहीं है। ये तो मानव का भूषण है। तो भगवान शंकराचार्य जी, राष्ट्र क्यों इस प्रकार से दुर्भिक्ष में पड़ता है, राष्ट्र में क्यों इस तरह अनुशासनहीनता उद्दंडता पनप रही है, इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी शिव जी के साथ संवाद कर रहे हैं। धर्मो में चतुरंग्रिक सुचरिता हे राजा वतन से, राजाओं में श्रेष्ठ राजा को राजा वतंस कहते हैं। तम तत्सम्बुद्धो राजा वतंसे, संबोधन में राजा वतंसे अर्थात राजा वतंस अर्थात सर्वश्रेष्ठ राजा। आप जिस दिन से मानस पुण्यरिका नगरे मेरे इस शरीर रूपी राष्ट्र में मानस हृदय रूपी सिंहासन में आकर जब से विराजमान हुए हैं आपके सुशासन का ये प्रतिफल है। भगवान शिव को एक राजा की उपमा देकर स्तुति कर रहे हैं। आपके सुशासन का ये प्रतिफल है, आपके अनुशासन का ये प्रतिफल है। दंड देने वालों को आप दंड देते हैं, पुरस्कार देने वालों को पुरस्कार देते हैं, कर्मयोगियों को कर्म का अवसर देते हैं, भक्तों को भक्ति का अवसर देते हैं, योगियों को योग का अवसर देते हैं। आपके राज्य में सभी को सब अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान शिव को कह रहे हैं राजा वतन से मानस नगर स्थिति आपके द्वारा मेरे मानस सिंहासन में आकर विराजमान हो जाने के बाद फिर देखिए मेरे राज्य में मेरे इस साम्राज्य में इस राष्ट्र में क्या नहीं हुआ है। धर्मों में चतुरंगिका सुचरित धर्म सुचरित चतुरंग धर्म के चार अंग हैं इसलिए धर्म चतुरंग। चतुरंग का अर्थ चारों दिशा भी होता है, चारों तरफ धर्म का ही साम्राज्य है। सभी लोग धार्मिक हो गए, सभी लोग धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपके हृदय में आने के बाद अधर्म का तो संकल्प ही नहीं हो रहा है। इस श्लोक का आप एक पौराणिक प्रसंग से आप ध्यान देकर समझ सकते हैं। भागवत का प्रसंग है, आप लोगों ने तो कई बार भागवत सुनी है। भागवत में एक राजा था भाई, कई राजा हैं भागवत में तो, लेकिन उन कई राजाओं में से एक राजा था जिसका नाम बेन था। सुना है ना, वो अच्छा राजा था कि दुष्ट राजा था? हैं? आजकल के जैसे ही था वो, उससे भी खराब था। लेकिन आजकल के लोग कुछ कुछ उसी से सीख रहे हैं। जिसका नाम था बेन, उसके राज्य सिंहासन में जाते ही राष्ट्र अनुशासनहीन हो गया, चोर बढ़ गए, डाका बढ़ गए, व्यभिचारी बढ़ गए, दुराचारी बढ़ गए, भक्तों को भक्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, भक्तों को यातना दी जा रही है, व्यापारियों को ईमानदारी से व्यापार करना नहीं दिया जा रहा है। आजकल भी ऐसे दिखता है, कहीं ना कहीं हो रहा है। तुम व्यापार करो, खूब चोरी करो, और तुम भी खाओ, हमको भी खाओ। हमारा वैदिक सनातन धर्म ये कहता था जियो और जीने दो, और आज की राजनीति कहती है खाओ और खाने दो। समझे नहीं? तुम भी खाओ, हमको भी दो, अकेले मत खाओ भाई, और जो अकेले खाने लगेगा उसको फिर जीना नहीं देंगे। रात दिन कुछ न कुछ बहाना बना के इनकम टैक्स पारेंगे, कुछ करेंगे, यूं किया त्यों किया, हजार फाइल निकालेंगे, अब हैरान पारेंगे उसको। यदि तुम भी खाओ करके दे दिया बलि, बलि दे, बलि देना बोलते हैं नहीं, भूतों को बलि दिया जाता है। ये सब भूत हैं, बेन के संतति हैं सब, उनको समय समय बलि न चढ़ाओ तो फिर ये हैरान करेंगे। हाँ, तो बेन ऐसे ही राजा था, तो ऋषियों ने मुझको श्राप दे दिया कि मर जा, तो बेचारा मर गया। हाँ, एक निमित्त है ऋषियों का श्राप, तो मरना तो वो अपने ही दुष्टता से मरा है। भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने कंसों को मारा और उसके बाद कारागार में जाकर अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किया, तो कृष्ण के साथ साथ ही नंद बाबा यशोदा भी उसका कारागार में गए। और जैसे ही कृष्ण ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया, वैसे ही वसुदेव जी नंद बाबा के साथ आलिंगन करके कहने लगे, ओह आप धन्य हैं, आपके पुत्र ने, आपके बेटे ने, वसुदेव ये नहीं कह रहे कि मेरा बेटे, मेरे बेटे ने, आपके बेटे, आपका पुत्र ने दुष्ट कंसों को मारा और हमको कारागार से मुक्त कर दिया, ऐसे पुत्र के पिता आप धन्य हो। देवकी भी यशोदा को यही बोल रही है, आपने क्या सत्पुत्र जन्माया है, आपके बेटे की करतूत से, बेटे के करनी से दुष्ट कंस मारा गया और हम इस जेल से मुक्त हो गए, हमको मुक्त किया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद है, बधाई है। नंद बाबा बोलते हैं कि वसुदेव जी, मेरा बेटा ये छोटा सा बालक, वो कंसों को क्या मारेगा है? उसमें कहां ताकत है, कहां शक्ति है। हिंसा स्वपापे न विहिंसिता खलो खलह हिंसा स्वपापे न विहिंसिता, दुष्ट व्यक्ति अपने ही पापों से मारा जाता है। आपने कहा कि मेरे बेटे कृष्ण ने उसको मारा है, उसमें क्या ताकत था उसको, थी उसको मारने की, वो तो अपने पापों से मारा गया है, मेरा बेटा एक निमित्त बन गया है। और आपने ये कहा कि हम लोगों को, सत्पुरुषों को जेल से मुक्त करा दी। साधु समत्ते न भयात विमुच्यते, आपको इस जेल से मुक्त करने की क्षमता हमारे बेटे में कहां थी, आप तो अपने समत्व भाव से ही आप खुद मुक्त हुए हैं। कोई बंधन में पड़ता है तो विषमता के कारण समस्या में पड़ता है, सारी समस्या से मुक्ति तो समभाव से ही संभव है। तो इसी तरह वहां राजा बेन को संतों ने श्राप दे दिया, श्राप निमित्त है, उसके अपने करतूत ही उसको मारने में पर्याप्त थी, संत निमित्त बन गए। जैसे नंद बाबा कहते हैं कंस मरने में उसका अपने पाप पर्याप्त है, मेरा बेटा कृष्ण तो निमित्त मात्र है। हिंस स्वपापेन विहिंसित खला साधु समत्तेन भयात विमुच्यते, नंद बाबा का मुख से निकला हुआ श्लोक है ये। इसी तरह बेन मारा गया, अब क्या करें, राज्य तो राजा विहीन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी अनर्थ होगा। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, राष्ट्र तीन प्रकार से विनष्ट होता है, अनायका विनश्यन्ति, यदि राष्ट्र में नायक नहीं हुआ तो वो राष्ट्र विनाश को प्राप्त होगा। नश्यन्ति बहुनायका, यदि राष्ट्र में ज्यादा नायक हो गए तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। हाँ, आजकल वो उसका आगे का बोलना उचित नहीं है, नहीं बोलूंगा है, बोलना नहीं चाहिए आजकल के हिसाब से, आजकल के हिसाब से हाँ बोलना नहीं चाहिए, कानूनन भी अपराध है और सामाजिक दृष्टि से भी बोलना ठीक नहीं है। तीसरा पक्ष है स्त्री नायिका, तो फिर आप लोग नाराज हो जाओगे, इसलिए हमने कहा बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं करके बोल दो तो फिर क्षमा हो जाता है, है ना? आप लोगों ने क्षमा किया कि नहीं बोलो? हाँ, तो ये तीन कारणों से राष्ट्र नष्ट होता है, या तो नायक नहीं है तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है, या बहुनायक हो गए तो फिर राष्ट्र नष्ट हो जाता है, और स्त्री नायक हो गई तो फिर भी राष्ट्र खत्म हो जाता है। लेकिन इतिहास में तो श्रीलंका में भंडारा नायका हुई, इंडिया में इंदिरा हुई है, और पाकिस्तान में नसरत भुट्टो हुई है ना, बेनजीर भुट्टो, और बांग्लादेश में भी हुई, आसपास में सभी स्त्री नायिका ही हुए भाई, मार्गरेट थैचर हो गई, क्या क्या हुए हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा ना आजकल बोलना ठीक नहीं है, और इन लोगों के प्रशासन में कोई कमी खोट नहीं थी, वो सही बात है। आज के यदि मूल्यांकन किया जाए प्रशासकों की, राष्ट्राध्यक्ष की, सुशासन की बात करें, तो इन लोगों की जिनका नाम अभी लिया गया, राष्ट्र व्यवस्था संचालन करने में ये बहुत ही सक्षम नेता थे, नेत्री थी, और उसके मुकाल में आज कोई नेता दिख नहीं रहा है, हैं? उनकी अनुशासनता थी, अच्छी थी, मैं प्रशंसा करता हूं उन लोगों की, हैं? लेकिन नीतिकारों ने पता नहीं कैसे कह दिया है, शायद धुंधुली जैसी कोई नेत्री पहुंची होगी सिंहासन में, हैं? उन नीतिकारों के समय में कोई धुंधुली जैसी नेत्री रही होगी, पता है ना आप लोगों को, कहीं शूर्पणखा जैसी रही होगी नेत्री, तब उन्होंने कहा स्त्री नायिका विनश्यति। तो फिर ऋषियों ने कहा कि राजा तो चाहिए, अब क्या करें, फिर उसी के शरीर को मंथन किया, मंथन करने के बाद पृथु उत्पन्न हुए, और उनका नाम पृथु रखा इसीलिए क्योंकि पृथ्वी को सस्यशालिनी बनाया, बेन जब तक राजा हुआ पृथ्वी में अनाज उत्पन्न नहीं होता था, दुर्भिक्ष हो गया था, चोर इतने थे, डाकू इतने थे, क्योंकि दुर्भिक्ष हो गया तो फिर चोर और डाकू होना ही थी, क्योंकि विकास का कोई काम हुआ ही नहीं था, तो विनाश ही विनाश था। तब ऋषियों ने शरीर का, बेन के शरीर को मंथन किया, मंथन किया तो पृथु प्रकट हुए, तो उन्हीं को राजा बना दिया, और पृथु जैसे राजा हुए तो सुवृष्टि हुई, जहां दुर्भिक्ष था वहां सुवृष्टि हुई। हां, भारत के किसान बहुत इस समय खुशी हैं भाई, प्रसन्न हैं, चारों तरफ बारिश है, लेकिन सौराष्ट्र में नहीं हुई कहते हैं, हो गई, हाँ जामनगर में हो गए, कल भावनगर से फोन आया था शाम को, बोले महाराज अभी तक बारिश नहीं हुई है, हमने कहा बारिश को कह देंगे जा भाई उधर भी, हमारे कहने से यदि हो जाए तो क्यों पक्षपात करता है, है? जहां खेती करना नहीं था तो वहां बिना तांडव कर दिया तूने, जहां किसान प्रतीक्षा कर रहा है वहां क्यों नहीं जाते हो, जाओ भाई। तो हमने कहा ठीक है, प्रार्थना करेंगे, भेजेंगे तुमको एक दो दिन में। चलो राजकोट तक पहुंच गए, जामनगर तक पहुंच गया, तो भावनगर भी एक दो दिन में पहुंचेगा, तो उन लोगों को कहना चाहिए कि थोड़ा सा आमरस और श्रीखंड पूड़ी पका के रखो, आएगा वो। फजे तो भी बना के रख देना भाई, उसको फजे तो बहुत पसंद है, जाने दो। तो सुवृष्टि हुई, पृथु जैसे ही राजा बने सुवृष्टि हुई, जब चोर थे वो सब शांत हो गए, पृथ्वी राज्य की चारों तरफ प्रशंसा हुई है, सब आनंद में रहने लग रहे हैं, मान लो कि साक्षात स्वर्ग उतर आया है धरती में, ऐसा राज्य हो गया है। तो पृथ्वी जैसे राज्य का राजा आज तक इतिहास में पृथ्वी में हुआ नहीं, जोते गए है, देख लो पृथ्वी अपने आप ही अन्न देने लग गई, धर्मों में लगभग उसी की उपमा दे रहे हैं यहां महाराज। जब आप इस मानस सिंहासन में हृत पुंडरी का राज्य में जब आप निवास नहीं किया था, तब तक तो इसी प्रकार का दुर्भिक्ष था महाराज, सुबह शाम दो टाइम रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल था, मिलता नहीं था। अब आप आके मानस हृदय में राज्य करने लगे तो खाने की चीज चारों तरफ से आने लग गई है। हमको जब बम्बई आते हैं तो यहां के जितने भी भक्त हैं, विशेष करके माताएं हैं, चारों तरफ से लाती हैं खाने की चीज, कोई कहते हैं महाराज ये बहुत अच्छा है, फाफड़े लेके आ गई, कोई खाखरे लेके आ गई, कोई गांठिया लेके आ गई, कोई क्या पापड़ पौवा लेके आ गई, क्या नाम रखा है, पापड़ गोवा और कई कोई लेके आ गए सेव ममरा, ये सब चीज महाराज ये खाइए ये खाइए ये खाइए, सभी चीज लेके आते हैं। तो कोई एक भक्त कहते हैं महाराज आपका तो मौज है, क्या मौज है, चारों तरफ खाने की कोई कमी नहीं है आपके यहां, क्या बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है। हमने कहा भाई जब शुरू शुरू में साधु बने थे तो बड़ा मुश्किल था है? एक समय भरपेट सातु भी खाने को नहीं मिलता था, भिक्षा मांग मांग कर भटक भटक कर खाते थे। काशी में जब रहते थे पढ़ते थे विद्या अध्ययन करते थे तो अन्न छत्र थे, तो निश्चित अन्न छत्र वहां जाकर खाना पड़ता था, मांग कर खाना पड़ता था, ऐसे ही न देते थे। एक घंटा कीर्तन कराते थे, मारवाड़ी अन्न छत्र था गदौलिया के चौक में, आज भी चल रहा है मारवाड़ियों का वो अन्न छत्र। लेकिन शर्त है कि एक घंटा कीर्तन किए बिना खाना नहीं देवे, तो भोजन के लिए ही कीर्तन करना पड़ता था। सारी पापड़ बेल चुके हैं वो और इस तरह विद्या अध्ययन की और इस तरह शिव जी की उपासना की काशी विश्वनाथ का, इसके बावजूद भी नियमित हम जल चढ़ाते थे, स्नान करते थे और दर्शन किया करते थे। ये साधना ही का प्रतिफल यह है कि हृदय में आकर भगवान शिव का जो राज्य हो गया, निवास हो गया, उनकी कृपा से ये फाफड़े फूफड़े पापड़ फूफड़ा अपने आप ही आ रहा है। अब कहां दुर्भिक्ष, वाह क्या आनंद हो रहा है ना? बेन का राज्य थोड़ी है, अब किसका राज्य है? हाँ ये देखो अब तो शिव जी का राज्य है, सिंहासन में मानस सिंहासन में तो अब तो भगवान विराजमान है, तो अब क्या दुर्भिक्ष होगा बोलो है? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं इस पृथ्वी में कोई भी प्राणी यदि भगवान का भक्त और भजन करता है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर रहे उसको भोजन की कमी नहीं होगी, भूख निवृत्ति के लिए भोजन की कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अन्न की व्यवस्था हो जाएगी। आपने पेपर पढ़ा है ना केदारनाथ में जो अभी जो विप्लव हुआ है, है? वहां यात्री ने एक वर्णन किया है कि यात्री ने है? पत्ते तोड़ तोड़कर वही चबा चबा कर खाके पांच दिन तक गुजारा किया है, पढ़ा है ना पत्रिका में। तब क्या कमी है, पत्ते तो है ना कम से कम, भूख की निवृत्ति तो हो ही रही, प्राण तो रक्षा तो हो ही रही है, भगवान के भक्त थे इसलिए भूख की निवृत्ति हो गई, व्यवस्था हो गई, खाने लायक पत्ता वहां कम से कम मिल तो गया, अन्यथा वो बिच्छू घास मिलता उनको तो फिर क्या करते, जीते। एक बिच्छू घास होता है, तुम लोगों को अनुभव नहीं होगा, बम्बैया को क्या पता बिच्छू घास क्या होती है, वो ऐसा डंस मारता है अड़ता है कि फफूंदे निकलते हैं, तीन दिन तक वो जलन होता है, है? उसका नाम ही बिच्छू घास है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था है, खाकर प्राण रक्षा करने के लिए उनको पत्ते तो मिल गए ना, हमारी तो आदत बिगड़ गई भाई, उन्हें पत्ते खाकर यदि पशु पक्षी और ये सब प्राण रक्षा कर सकते हैं तो हम क्यों रक्षा नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमारी आदत बिगड़ गई है तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य भगवान के आश्रय में रहकर भगवान का भजन करता है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाए वो भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि गीता में भी तो कहा योगक्षेम वहाम्यम अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योगा, प्राप्त वस्तु की संरक्षण क्षेम, अनन्य भक्तों को तो तुम उसके भगवान का स्मरण न करके औरों का स्मरण करने लग जाओ तो फिर जिसका स्मरण कर रहे हो वही योगक्षेम करे, हम क्यों करें करके बैठ जाते हैं भगवान है? तो यहां उसी से उपमा पृथु राजा जैसे राज्य हुआ सुव्यवस्थित, तो क्या हुआ बोले धर्मों में चतुरंग्रिक, चार अंगों वाला धर्म है। भागवत में तो आपने सुना है ना धर्म का प्रतीक बैल है ना, भागवत में भागवत में बैल को धर्म का प्रतीक माना गया और धर्म के बैल के चार चरण होते हैं, लेकिन भागवत में जो बैल खड़ा था वो एक चरण में खड़ा था और तीन चरण उसके नष्ट हो चुके थे। परीक्षित ने देखा और पूछा, तुम्हारे बाकी चरण क्या हुआ? बोले महाराज, तुम राजा बनने से पहले, तुम राजा नहीं बने थे, राजा बनने से पहले कली आकर मेरे बाकी तीन पांव को तोड़ चुका है। परीक्षित ने कहा कि अच्छा, उसकी ये हिम्मत, अब तो मैं राजा हो गया हूं ना, उस तुम्हारे तीन चरणों को तोड़ने वाला उस कली को अब भी मैं दंडित करता हूं। धनुष बाण निकाला और कली को लक्ष्य करके बाण का संधान किया। कली को यह पता चला कि ये परीक्षित मार डालेगा, अब तो उसी के शरण में जाना पड़ेगा। तुरंत परीक्षित के सामने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। मैं क्यों क्षमा करें? तूने ये बैल के तीन चरण क्यों तोड़ के दिया? बोले महाराज, हम क्या करें, कोई शासन करने वाला ढंग का तो था नहीं, हमारी मर्जी। आपको पता ही है कि हम कली हैं, जो भी करें हम ही तो मालिक हैं। अब आप आ गए सुशासन करने वाले, तो लेकिन अब तीन पांव टूट चुके हैं। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य से तू निकल के चला जा भाई, हाँ तब तो मैं जीवन दान दूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। बोले मुझे मत मारो, मैं आपका हित भी करूंगा, सभी का हित भी करूंगा। हाँ, मेरी एक विशेषता है, हित भी करूंगा और हित भी करूंगा। हित ये करूंगा कि यदि उसकी वृत्ति ठीक है तो उसका हित होगा, वृत्ति खराब होगी तो उसका अहित होगा। मेरी विशेषता है, मेरे रहते हुए मेरी उपस्थिति में दुराचार व्यभिचार ये सब भी बहुत ही होंगे और उसका प्रतिफल उसको पाप से उसका जीवन नष्ट होगा, बर्बाद होगा। लेकिन मेरी उपस्थिति में कोई भगवान का भजन करता है तो वही उसके उद्धार के लिए पर्याप्त तो हो जाएगा। ये मेरी विशेषता है, यदि मैं न रहूं, मुझे तुम मार दोगे तो अपने जीवन के उद्धार के लिए सभी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, चारों अंगों की आवश्यकता पड़ेगी। एक अंग इसलिए बचा है कि बस इसी से उद्धार होगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, तुलसीदास जी ने कहा। कलौ केशव कीर्तनाथ, बस मेरी उपस्थिति में यदि परमात्मा का भाव से संकीर्तन करता है, उतने संकीर्तन मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। यदि मुझे मार दोगे, मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी, तो केवल संकीर्तन से कल्याण नहीं होगा, तप भी करना पड़ेगा। सत्य दया तपो शौचम, धर्म के चार अंग हैं। महाराज, आपके इस सिंहासन में आकर, इस राज्य में जब आप राजा के रूप में विराजमान हुए, तो ये अपने आप ही चारों अंग, धर्म के चारों अंग पूर्ण रूप में विकसित होने लग गए। धर्मो में चतुरंग्रिका सुचरिता, पापम बिना संगत। और आपके सिंहासन में राज्य करते ही पाप विनाशम गत, पाप अपने आप ही नष्ट होने लग गए। पृथु जैसे ही राजा बन गए पृथ्वी के, वहां दुष्टा दुराचार व्यभिचार पाप कर्म हमेशा के लिए खत्म हो गए उनके राज्य में। क्या है वह दुष्ट? काम क्रोध मदा दयो विगलिता, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य आदि षड रिपु, ये छह शत्रु हैं। आप जब तक इस सिंहासन में आकर, राज्य में सिंहासन में आकर विराजमान नहीं हुए थे, तब तक इन्हीं लोगों का आतंक था। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन्हीं का आतंक था। अब ये कहां चले गए पता ही नहीं चलता है भाई। हृदय में शिव विराजमान हो और तुम्हारे कामना जगे, संभव नहीं है, क्योंकि शिव का नाम क्या है? स्मर हर है। और काम का नाम क्या है? स्मर। और क्योंकि शिव यहां रहते हैं तो फिर उनको देखते ही काम भाग जाता है, क्रोध भाग जाता है, लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब भाग जाते हैं। मेरे जीवन से अब ये सब दूर हो गए महाराज, क्योंकि अब सुशासन चालू हो गया ना आपकी, आपके हृदय रूपी सिंहासन, देह रूपी राज्य में, हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान होते ही काम क्रोध मद दयो विगलिता काला सुखा विस्कृता। यहां तक कि समय भी सुख का आविष्कार करता हो गया, काल माने समय, समय सब अनुकूल होने लग गया महाराज। और आप आकर जब बैठे नहीं थे तब तक तो समय प्रतिकूल हुआ करता था, काल दुख को उत्पन्न करता था, अशांति को उत्पन्न करता था, विक्षेप को उत्पन्न करता था, देख लो ना। ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता। खेत में जब सुशासन हो गया, सुविक्ष हो गया, वृष्टि हुई तो किसान के खेत में फल लगने लग गए, चारों तरफ पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहिता ब्राह्मणा संतु निर्भया काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी। परमात्मा से यही तो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि नहीं, ये तो राष्ट्रीयता, यही तो है राष्ट्रीय प्रार्थना है ये है? काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहिता ब्राह्मणा संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा संतु पुत्रिणा संतु पौत्रिणा निर्धना धनमाप्नोति। वाह क्या सुंदर, क्या सुंदर प्रार्थना है। तो ये तब होगा जब शिवजी का राज्य होगा, शिवजी का सुशासन चलेगा। ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता, ज्ञान रूपी ज्ञानानंद, ज्ञान ही है आनंद का हेतु, तो ज्ञानानंद रूपी फल सुफलितम, सुष्टु फलितम, सुफलितम, श्रवण किया हुआ वेदांत ब्रह्म विद्या वो फलीभूत होने लग रहा है। हम लोगों के जीवन में वेदांत ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हृदय में शिव जी का शासन नहीं है जीवन में, तो काम क्रोधों का शासन है, तो इसके कारण से ब्रह्म विद्या सुफलित नहीं हो रहा है। जो ब्रह्म विद्या सुफलित हुआ, लक्षण क्या है? दैवात लब्धेन संतुष्ट आत्मवित चरणार्चनम, प्रारब्ध से जो प्राप्त है उसी में संतोष होना, यही ज्ञान सुफलित होने का लक्षण है। हाँ, आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करो, अपने जैसे और मुझसे जैसा व्यवहार करें ये अपेक्षा रखते हो तो फिर तुम दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत अयम ही परमो धर्म, ये ज्ञान सुफलित हुआ हुआ लक्षण है। हाँ, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। गीता में द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण में ज्ञान सुफलित हुए का लक्षण बता दिया है। जिसके जीवन में ऐसे भाव है मानो कि उसके जीवन में ज्ञान सुफलित हुआ, और ज्ञान सुफलित उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन भगवान शिव रूपी राजा से सुचल सुशासित होगा, तब फिर धर्म चतुरंग ही होगा, काम क्रोध आदि पलायन हो जाएंगे। समय सुखाविष्कृता हो जाएगा, अनुकूल फल देने वाला। ज्ञानानंद बहुषधि सुफलिता कैवल्य, कौन सा फल देगा? कैवल्य न रूपी, कई केवल रूपी अद्वैत स्वरूप फल सुफलित होगा। हे नाथ कैवल्यनाथे सदा मान्य, आप सर्व मान्य हैं, ऐसे राजा तो सभी को चाहिए कि नहीं बोलो? मान्य मानस पुंडरीक नगरे, मानस हृदय रूपी कमल, पुण्यरिक माने कमल, हृदय रूपी कमल में और ईश्वरी रूपी नगर में राजा वतन से स्थित आपके राजा के रूप में स्थित हो जाने पर ये सब भाव आपके जीवन में अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। अब एक किसान के रूप में शंकराचार्य जी उस श्लोक में एक राजा सुशासन करने वाला राजा के रूप में उपमित किया, तब ये 40वें श्लोक में एक किसान के रूप में मेहनती कुशल किसान के रूप में भगवान शिव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दीयंत्रे न घटो बचो घटे न कविता कुल्योपकुल्या क्रमेर आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितां बोराशि दिव्यामृत हृत्केदारयुता च भक्ति कलमा साफल्यमा तन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीति कुतः। हे विश्वेश, विश्व का एकमात्र ईश, विश्वेश विश्वम ईशते इति विश्वेश, शासन करने वाले विश्वेश, विश्वनाथ लोकनाथ है, सारे संपत्ति का एकमात्र, विश्व के प्राणियों का एकमात्र आप नाथ हैं। जब तक आपका आश्रय नहीं मिलेगा तब तक सारे जीव अनाथ ही रहेंगे। है बाप और मां ना हो तो क्या कहते हो, ये अनाथ बालक है, कहते हो कि नहीं है? और शिवजी ना हो तो सब जीव प्राण अनाथ है भाई, तो इसलिए आप ही सारे विश्व के नाथ हैं। हे विश्वेश विश्वनाथ भगवन, छह प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न भगवन, षड्विध भगम अस्य अस्ति इति भगवन, धनम अस्य अस्ति इति धनवान, जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास गुण होता है उसको गुणवान कहते हैं, इसी तरह जिसके पास छह भाग पूर्ण रूप में विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। छह भाग क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भगयति ऋण। समग्र ऐश्वर्य, समग्रस्य समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य और समग्र श्री कांति जिसके अधीन में हो, ये छह को भग कहते हैं और उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं जिसके अधीन में रहो। धीयंत्रेण बचो घटेन कविथा कुल्लेन, मैं एक किसान हूं महाराज, शंकराचार्य जी अपने को एक किसान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसान अपने खेती को उर्वरा बनाता है, अच्छे फसल के लिए खेतान मेहनत करता है और अपने खेती को बहुत उर्वरा बनाता है। उर्वरा का अर्थ होता है खूब जुताई करता है और खूब खाद आदि डालता है, यूरिया, यूरिया नहीं वो केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक गाय का भैंस का वो खाद डालता है, और इसीलिए जितनी खाद जमीन में रहेगा और जितनी मिट्टी नरम होगी तो उतना ही जमीन को उर्वरा कहते हैं। उर्वरा शब्द का अर्थ होता है बहुत सद्य और खूब अच्छा फसल देने वाली योग्य जमीन को उर्वरा जमीन कहते हैं। मरुभूमि में फसल क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां खाद नहीं है, वहां के पानी में वो चीज नहीं है, वहां के मिट्टी में वो चीज नहीं है, और उसको उस योग्य बनाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत, खूब खाद डालना पड़ेगा। गाय भैंस का खाद यूरिया डालने से नहीं होगा, वो तो कहा है यूरिया जितना डाल के करोगे फसल तो पैदा होगा लेकिन जमीन की योग्यता समाप्त हो जाएगी। निर्बीजा पृथ्वी, पृथ्वी में वह पृथ्वीत्व सहार खत्म हो जाएगा, इसलिए गाय पालो, गौशाला बनाओ और गाय पालो, दूध पियो और खाद जमीन में डालो, अच्छी फसल होगी। आज वो संस्कार ही खत्म हो गया भाई,
धीयंत्रेण, हाँ यहां क्या भक्ति कलम, वो जमीन क्या है? तो ये शिवा मैंने खूब भक्ति करके हृदय रूपी खेत को खूब उर्वरा बना रखा है, खूब उर्वरा है, जो फसल मैं लगाऊं तो वहां खूब फलने फसल देने में तैयार है वो भक्ति कलमा। और पानी क्या है फिर? पानी भी तो चाहिए, तो पानी है महाराज। धीयंत्रेण घटो, तो तुम लोगों ने किसान को देखा है कि नहीं, वो रहड़ होता है ना, रहड़ रेट, वो बैल चलता रहता है, वो एक यंत्र है, वो घूमता रहता है, उसमें डब्बे लगे हुए हैं, नीचे से आते समय पानी भर के ले आता है और ऊपर आते ही फिर वो उल्टे मुख होते ही पानी सब गिरा देता है, फिर उल्टे मुख नीचे जाता है और फिर जब आने लगता है तो फिर पानी भर के आता है। बैल घूमते ही रहता है, वो यंत्र घूमता ही रहता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी यंत्र है वो रेट, धी यंत्र। फिर घड़ा क्या है? बचो घटे ना, मेरी जो वाणी है, बाक इंद्रिय है, यही घड़ा है। कविता कुल्यो उपकुल्या क्रमई, पानी कहां से लाओगे? बोले कविता रूपी आपके स्तोत्र रूपी, आपके स्तोत्र रूपी नदियों से, कुएं से, वाणी रूपी घट में, बुद्धि रूपी यंत्र से चलाकर, भाव रूपी जल को निकाल के हृदय रूपी खेत को खूब सिंचा हुआ है। ये मरुभूमि नहीं है, है? आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितांबो, क्या लाए हो? तो आनीत कहां से? कविता कुल्या शिव चरिता रूपी अंब, चरितांब, भगवान शिव के दिव्य लीला दिव्य चरित्र रूपी जल को वाणी रूपी घड़े से, बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा चलाकर और कविता रूपी नदियों में से वो पानी भर के ले आया है। आनीते च सदा शिवस्य चरितां भोराशि दिव्यामृतई, दिव्यामृत रूपी जल लाके सिंचन किया है। कहां? हृत केदार युताश्च भक्ति कलमः, हृत रूपी हृदय रूपी केदार खेत, हृदय रूपी केदार में भक्ति रूपी खाद डालकर आपके दिव्य चरित्र रूपी पानी से सिंचा हुआ है वह खेत। तब फिर क्या? साफल्य मातन्वते, मेरा हृदय रूपी खेत अच्छा फसल देने में समर्थ हो चुका है, योग्य हुआ है। साफल्यम किसी भी समय में कोई भी फल देने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के फल देने में मेरा हृदय रूपी खेत अब योग्य हो चुका है महाराज। दुर्भिक्षान मम सेवकस्य भगवन विशेष भीति कुतः, तब मेरे जीवन में अब दुर्भिक्ष होगा नहीं महाराज, आप आ जाओ खाने के लिए अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा, आप आराम से विराजमान हो, मेरे में खूब फसल लगे हुए हैं, खूब अन्न होगा, आपको जो चाहिए वो सब आपको खाने को मिल जाएगा। दुर्भिक्ष होगा डर के मारे, है पता नहीं तू खाने को देगा कि नहीं, पहनने को मिलेगा कि नहीं, है रहने के लिए ठीक से घर मिलेगा कि नहीं, तू सेवा ठीक से कर पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना महाराज। मैं समृद्धशाली हूं, मैं किसान हूं, आपको जो चाहिए वो सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास खेत सुफला है, सस्यशालिनी है। दुर्भिक्षान मम सेवकस्य भगवन विश्वेश भीति कुतः, भीति आपको डरने की जरूरत नहीं है, दुर्भिक्ष होगा खाने को नहीं मिलेगा ऐसा समझकर डरने की जरूरत नहीं, आप आओ ना, आपके आ जाने से ये और भी ज्यादा सस्यशाली नहीं होगी, सुभिक्ष होगा आपके नाम से, मुझे भी खूब खाने को मिलेगा,
दुर्भिक्ष की भीति मुझ में भी नहीं होगा और दुर्भिक्ष की भीति आपको भी नहीं रहेगा। आप और हम बड़ा आराम से ही बैठेंगे, आइए महाराज आप निवास करो। ये भाव है। भक्त भी भगवान की भक्ति करके भगवान के भरोसे में सारे दुर्भिक्षों से निर्भय हो जाता है, सारे दुशासनों से निर्भय होता है। सुशासना की इतनी कल्पना करता है भक्त कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता है कि यहां भगवान के राज्य में कुशासन हो, वो कल्पना नहीं करता, इसलिए उसी से वो आनंद का अनुभव करता है। पापोत्पात विमोचनाय रुचिरे ऐश्वर्याय मृत्युंजय स्तोत्र ध्यान नति प्रदक्षिण सपर यालोचना कर्णने जिह्वा चित्त शिरोंग्री हस्त नयन श्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर् मामेव मामेवच। अब उस गुरु के पास शंकराचार्य जी पहुंच गए। मान लो एक बहुत ही अज्ञानी पट्ट मूर्ख शिष्य है, उसको उपदेश अपने ही मुख से करना पड़ता है गुरु को। यहां शंकराचार्य जी भगवान शिव से ये कह रहे हैं, मान लो कि महाराज मैं सनत कुमार हूं जैसा योग्य शिष्य नहीं हूं। आप लोग हैं सनत कुमारों की कहानी सुनी है कि नहीं आप लोगों ने? जब सनत कुमार ब्रह्मा जी के संकल्प से मानस पुत्र के रूप में पैदा हुए तो मानस पुत्र थे, इसीलिए वो जन्मना ज्ञानी थे, उर्धरेत थे, अपरिग्रही थे, वैराग्य से संपन्न थे, ज्ञान वैराग्य विवेक वैराग्य से संपन्न थे। उनको सारा औपनिषद विद्या जन्मना सिद्ध था, पूर्व जन्म में ही उन लोगों ने श्रवण मनन कर चुके थे। कल निधि ध्यासन की अवकाश थी, शायद उतनी में ही वह योग भ्रष्ट हो गए और इस बार जन्म हो गया, तो वह उनको कल निधि ध्यासन करना था, श्रवण करना बाकी नहीं था, मनन और निधि ध्यासन करना था, उतने के लिए शायद उनको ब्रह्मा जी के संकल्प से जन्म लेना पड़ा। वो भी योनिज नहीं है, प्रारब्ध जन्म जन्य जीवन नहीं था सनत कुमारों का। तो आप लोगों को कई बार सुनाया है, इसी प्रसंग में भी मैंने सुनाया, वे चारों भाई नित्य निरंतर औपनिषद ब्रह्म विद्या का ही चिंतन किया करते थे। एक दिन एक भाई व्यासपीठ पर बैठता था और तीन वहां नीचे बैठकर श्रोता बनते थे और एक भाई वक्ता बनते थे। आज शुरू शुरू में 5:30 बजे जब हम ऊपर आए तो हॉल में कौन था? बेचारे दो सज्जन कपल आके बैठे थे भाई। मैं आते जब तो हमने कहा अरे दो हैं सनत कुमारों के तो तीन हैं, एक मोहिनी से आ गया, फिर बाद में चिमन भाई आ गए तो चार हो गए। अरे ब्रह्म विद्या तो एक में भी शुरू हो जाता है, सनत कुमारों के तो तीन ही तो श्रोता थे, एक वक्ता हो गया तीन श्रोता हो गए। दूसरे दिन फिर दूसरे की बारी होती थी कि वह वक्ता के सिंहासन में बैठता था और बाकी तीन फिर श्रोता बनकर नीचे बैठते थे। तीसरे दिन फिर तीसरे की बारी आती थी, वह सिंहासन में बैठकर वक्ता बनते थे और बाकी तीन भाई श्रोता। चौथे दिन चौथे की बारी आती थी, वो सिंहासन में बैठ गद्दी पर बैठकर वक्ता होते थे, बाकी तीन श्रोता होकर। इसी तरह नित्य निरंतर वेदांत विचार हुआ करता था, ब्रह्म विचार हुआ था, औपनिषद स्वाध्याय चिंतन हुआ करता था। हाँ, कोई कमी नहीं, सभी विद्वान थे और फिर भी सभी जिज्ञासु थे। आसुप्ति रामृते कालम नैद वेदांत चिंतया, उपनिषद की आज्ञा है, तुम जागो आंख खुले तब से ब्रह्म विचार शुरू करना, जब तक निद्रा न लगे तब तक ब्रह्म विचार ही करना, जब से पैदा हुए हो तब से जब तक मृत्यु न हो तब तक ब्रह्म विचार ही करना है। तो ये वेद की आज्ञा भी है, सनत कुमार यही करते थे। तो नारद जी भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, नारद जी घूमते हुए आ गए, इस कहानी मैंने पहले भी सुना चुका हूं। घूमते हुए आए, देखा ब्रह्म विद्या की चर्चा कर रहे हैं सनत कुमार आदि। सुना तो बहुत अच्छा लगा, क्या सुंदर सत्य वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, क्या युक्ति से, आत्मानंद जैसे करता है वैसे, उससे ज्यादा अच्छा उनके मुकाबले में आत्मानंद कहां पहुंचेगा भाई, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां सनत कुमारों का सत्संग, उनकी युक्ति, उनका प्रमाण, और कहां आत्मानंद। अपने आप को दिए कुछ ऐसा है उनकी तुलना करना भाई है। कि भक्त उस सिद्धांत को समझे। नारद जी को अच्छा लगा तो बोले ये विद्या तुमको कहां से मिली भाई। सनत कुमारों ने कहां से मिले, जन्मजात हमको सिद्ध है ये विद्या। बोले कोई गुरु से नहीं मिला। बोले नहीं, कोई गुरु नहीं है। अरे ख्याल रखो, यदि तुमने जीवन में गुरु नहीं किया तो शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा। भले ही तुम ज्ञानी हो, शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा। और गीता में भगवान ने कह दिया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृष्ट्य वर्तते कामकारता, न तो सिद्धि मापनोती, न शांति, न पराम गति, न सुखम, न पराम गति। शास्त्र विधि का उल्लंघन करके व्यवहार करने वाला व्यक्ति को संसार में किसी भी हालत में सुख और शांति की अनुभूति कर ही नहीं पाता है। चाहे कोई भी हो, शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम लोग भी गुरु धारण करो तो फिर ये विद्या प्रामाणिक होगी। तो हमने बताया था कि गुरु, तो तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमको गुरु तो करना ही चाहिए। सनत कुमार गुरु खोजने गए तो ब्रह्मा जी के यहां, तो ब्रह्मा जी के करतूत देखा तो अरे ऐसे प्रपंच को क्या गुरु बनाना है भाई। ब्रह्मा ये न कुलाल बन नियमित हो ब्रह्मांड भांडो धरे। जैसे आजकल छत्री के व्यापारियों को खाना खाने का भी फुर्सत नहीं है, है? उसी तरह ब्रह्मा जी को फुर्सत ही नहीं है। आजकल और व्यापारियों को बहुत फुर्सत है, छत्री के व्यापारी को है? जूते और चप्पल के, जो प्लास्टिक के जूते है, रबड़ के जूते चप्पलों को, व्यापारियों को तो फुर्सत ही नहीं है भाई। ये तो सीजन है उन लोगों का। उसी तरह ब्रह्मा जी लगे हैं, क्या ज्ञान का उपदेश करेंगे, उनको क्या गुरु बनाएंगे उनको। तो चल पड़े विष्णु के पास। अब विष्णु तो बस क्षीर सागर में सोए हैं, शेषनाग के और भूदेवी श्रीदेवी पांव दबा रही हैं, सारा दुनिया का अलंकार अपने ही शरीर में श्रृंगार रखा रहे हैं। हाँ, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, देख लो। बोले ये ऐसा प्रपंच, कहां हम केवल लंगोटी लगा कर चलते हैं, कहां ये ऐसे को क्या गुरु बनाना है। चलो फिर कहां चलते हो, तो फिर कैलाश चले गए, कैलाश पर्वत में है। तो दूर से देखा भगवान शिव तो कैलाश के चोटी पर बैठे हैं, और वामांगे च विराजते भूधर सुता, और बाएं गोद में पार्वती को रखा है, और अंकमाल करके बैठे हैं, अपने आप जमीन में बैठे हैं, और पार्वती को अपने खूणा में रखा है, गोद में रखा है। क्या ये तो स्त्री परम लंपट है भाई, ऐसे को क्या गुरु बनाए। चलो अब किसको गुरु बनाए। तो भगवान शिव समझ गए ये गुरु खोजते हुए चल रहे हैं, लेकिन गुरु में जो गुण खोजना चाहिए था वो चश्मा नहीं लगाया, दोष खोजे वो चश्मा लगा लिया, तो इनको जहां भी जाएंगे दोष ही दिखेगा। फिर भी श्रद्धा है, शास्त्र में विश्वास है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिज्ञासु है, इनकी इच्छा तो पूरी कर देनी चाहिए। शिव जी को, पार्वती को कहा कि तुम बैठो मैं आता हूं, तो 6 वर्ष का 5 वर्ष का रूप धारण करके भगवान शिव दौड़ते हुए गए। सनत कुमार जिधर गए थे पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे दौड़कर उनसे भी आगे निकल गए। सनत कुमारों ने देखा वो, हम तो 16 वर्ष के बुढ़े, अभी 5 वर्ष का बालक, लेकिन हमसे भी क्या वैराग्य बयान, क्या निश्चिंत है, जो भी हो गुरु तो इसी को बनाना चाहिए। ये हमारे गुरु लायक बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा हो गई सनत कुमारों की है? तब लेकिन ये तो दौड़े जा रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है। चलो खोजते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाके विश्राम करेगा, जहां भी मिलेगा इन्हीं को गुरु बनाएंगे। अब दूसरा किसी को गुरु बनाने का चांस नहीं है। तो गए तो थोड़ी देर दूर जाकर भगवान शिव एक बट वृक्ष के सड़क के किनारे बट वृक्ष के नीचे दक्षिण तरफ मुंह करके आराम से बैठे हैं। सनत कुमारों ने देख लिया, ए देखो बैठा ही, मिल गया मिल गया। तो अब तो इन्हीं को घेर के यहां बैठ जाओ, जब इनकी समाधि टूटेगी तब हम इनको कहेंगे कि हमको दीक्षा दे दो, तो हम गुरु धारण करेंगे, उपकृत होंगे, तब फिर सब कुछ हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ब्रह्म विद्या फलीभूत हो जाएगी, सफल हो जाएगा। बैठे रहे, भगवान शिव ने आंख भी नहीं खोली, कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर भी सनत कुमारों को तो पहले गुरु करना था, उसके बाद और को कोई लक्ष्य ही नहीं था, तो जाएंगे कहां? ऐसा गुरु तो और मिलना भी संभव नहीं था पृथ्वी में। आराम से बैठे रहे, कभी न कभी तो आंख खोलेंगे, इस धैर्यता के साथ बैठे रहे। तो भगवान शिव ने धीरे से आंख भी नहीं खोला और हाथ उठाकर ये चिन्ह मुद्रा भद्रा मुद्रा का संकेत कर दिया। ये संकेत करते ही सनत कुमारों को बोध हो गया, ये देखो ब्रह्म जीव जगत त्रिगुणात्मिका, ये जीव जगत से अलग होकर ब्रह्म के साथ एक होता है, तब ये जीवो ब्रह्म ही बनाकर तत्त्वमसि। महावाक्य का उपदेश तो ये मुद्रा से दे दिया है, बस ज्ञान प्राप्त हो गया, यही हमारे गुरु हैं। सनत कुमारों ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम की। भगवान शिव तो ध्यान में बैठे रहे थे और सनत कुमार चले गए। इस दृश्य को शंकराचार्य ने इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया है। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्य गुरोर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु युवा है, शिष्य वृद्ध है, बट वृक्ष के नीचे, बड़ा आश्चर्य है। और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, बिना बोले ही गुरु ने उपदेश किया, शब्द का प्रयोग नहीं किया। और शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों को सब ज्ञान प्राप्त हो गया, महावाक्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या आश्चर्य की घटना घटी। शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा उसी पर संकेत कर रहे हैं। सनत कुमार तो उत्तम क्वालिटी के शिष्य थे, तो सेवा किए बिना पहले ही चित्त शुद्ध था, उनको आगे सेवा करने की जरूरत नहीं थी, श्रवण मनन आदि करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके द्वारा मौन उपदेश से ही उनका काम बन गया महाराज, लेकिन मैं ऐसा योग्य नहीं हूं, मैं तो भीम जैसा जड़ बुद्धि वाला हूं, मुझे तो आप अनुशासित करिए, आज्ञा करिए, वाक्य का उपदेश करें। बोले फोकट में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सेवा करना नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान ने कहा महाराज आप जो कहोगे वो सेवा करूंगा। पापोत्पात विमोचनाय, जीवन में जो अविद्या है वही पाप है, उस अविद्या रूपी पाप का ही उत्पात जब तक जी रहे हैं उसी का साम्राज्य है। पापोत्पाप उत्पात है, भूख प्यास आदि व्याधि, भूख प्यास जन्म मृत्यु, ये सब क्या है? पापोत्पात, पाप का उत्पात है, ये तूफान है, ये उसी के चलते उस पाप को नष्ट करना मेरा लक्ष्य है। पापोत्पातम विमोचनाय रुचिर ऐश्वर्याय, हे मृत्युंजय रुचिर ऐश्वर्याय, यानी ब्रह्म साम्राज्य प्राप्ति के लिए। ये कोई साम्राज्य नहीं, ब्रह्म साम्राज्य। उपनिषदों के उपनिषद में आत्मज्ञानी को क्या कहा? स्वराट भवती सम्राट भवती, उन ज्ञानियों को कहा है ब्रह्म साम्राज्य, ब्रह्मा जी का नहीं, ब्रह्म साम्राज्य। उसको प्राप्त है, उसी को यहां ऐश्वर्य आया कह दिया, उसकी प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे मौन उपदेश न करें, मेरी समझ में नहीं आएगा। सनत कुमारों को जो मौन उपदेश किया वो मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, मामे अवचह, मेरे सामने मौन नहीं रहना भाई, मुझे शब्दों से उपदेश करना, तत्त्वमसी शब्द उच्चारण करके मुझे उपदेश करना। बोले फोकट में, बोले नहीं महाराज, हम आपकी हर सेवा करेंगे महाराज। स्तोत्र, यदि आपको अच्छे अच्छे आपकी प्रशंसा सुनने की इच्छा हो तो वो भी हम करेंगे। स्तोत्र ध्यान नति, स्तोत्र माने स्तुति गान, ध्यान माने चित्त में उनकी छवि का चिंतन, नति माने उनको ही प्रणाम, प्रदक्षिणा उनका परिक्रमा, सपरियाय पूजा अर्चना, आलोचना आलोकना उनके मूर्ति का विग्रह का दर्शन, आकर्ण नहीं सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए कान, ये साधन मेरे पास है, मैं ये सारे साधन आपकी सेवा में लगा दूंगा भाई। क्या क्या? स्तोत्र के लिए जिह्वा, ध्यान के लिए चित्त, नति के लिए सिरा, प्रदक्षिणा के लिए अंग्री द्वय, सपरिया के लिए हस्त, आलोकन के लिए नयन और आकर्ण के लिए श्रोत्र इंद्रिय, ये सब आपकी सेवा में मैं लगा दूंगा महाराज। हाँ, ये सब को सब आपके ही सेवा में रहेंगे। अहम प्रार्थितो, इन सबके द्वारा मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। माम आज्ञापय, माम आज्ञापय, और क्या सेवा करना है वो आप मुझे आज्ञा दें। तन निरूपय, उनको भी आप प्रतिपादन करें। माम आज्ञापय, मुझे उपदेश करें और उनके अर्थ का निरूपण भी करें। मुहूर्त बार बार निरूपण करें, बताएं, एक बार नहीं नौ बार तक भी करना पड़े करना है तत्त्वमसी। मामेव मामे अवच, मेरे सामने मौन नहीं रहना, बस जैसे सनत कुमारों को मौन किया वो मेरी समझ में नहीं आएगी, मुझे तो आप बोलकर ही शब्द के रूप में ही महावाक्यों का उपदेश करना, इशारों से नहीं। रही बात सेवा की बात है, ये सब आपके सेवा में समर्पित कर रहा हूं मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।